नमस्कार भारत, आज है 3 अक्टूबर, दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित कश्मीर के बारामूला में कल रात हुआ चरमपंथी हमला, गोलीबारी में 2 चरमपंथी और 1 जवान की मौत। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के हालात पर चर्चा के लिए आज बुलाई सर्वदलीय बैठक।
इस इजलास का मेन या मरकजी मौजू जो है वो कश्मीर में सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान ही रहेंगे।
कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में भारत भी हुआ शामिल।
This historic step will further India's sustainable path to growth and development.
सुनिएगा साप्ताहिक स्तंभ खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। भारत प्रशासित कश्मीर के बारामूला में सैन्य कैंप पर हुए चरमपंथी हमले में 1 सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 2 हमलावर मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक चरमपंथियों ने ग्रेनेडों से हमला किया और गोलीबारी की। अधिकारियों के मुताबिक हमले के बाद इलाके में खोजबीन अभियान जारी है। 2 सप्ताह पहले भारतीय सेना के उड़ी कैंप पर हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। गुरुवार को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चरमपंथी कैंप नष्ट करने का दावा किया था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने नकार दिया था। कोलंबिया में हुए जनमत संग्रह में लोगों ने बेहद कम अंतर से फार्क विद्रोहियों के साथ हुए सरकार के शांति समझौते को नकार दिया है। जनमत संग्रह में 40% से कम मतदाताओं ने ही हिस्सा लिया। नतीजों के बाद राष्ट्रपति खुआन मानवेल सांतोस ने कहा है कि विद्रोहियों के साथ जारी द्विपक्षीय संघर्ष विराम लागू रहेगा और वो शांति स्थापित करने के लिए काम करते रहेंगे। वहीं विद्रोही गुट फार्क के नेता टिमोशेंको ने कहा है कि उन्हें नतीजों पर अफसोस है। टिमोशेंको ने कहा कि विद्रोही शांति स्थापित करने के लिए काम करते रहेंगे। 4 साल चली वार्ता के बाद बीते सप्ताह हुए समझौते के तहत फार्क विद्रोही राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हथियार डालने पर तैयार हो गए थे। कोलंबिया में पिछले 52 सालों से गृह युद्ध चल रहा है। समझौते को नकारे जाने के बाद फिर से हिंसा का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रपति मानवेल सांतोस ने कहा,
El triunfo del no es el triunfo de una paz con justicia.
ना की जीत न्याय के साथ शांति की जीत है, ये क्षमा और सुलह के साथ शांति की जीत है। ना कि ये जीत अधिक समावेशी शांति की जीत है, वो शांति जिसमें हम सब शामिल हैं, वो शांति जो अधिक स्थायी है। मैं फार्क से कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखिए, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुँचे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने जनमत संग्रह में लोगों के भारी बहुमत से यूरोपीय संघ के प्रवासी कोटे को नकारने के बाद जीत का दावा किया है। हालांकि जनमत संग्रह में कम ही लोगों ने हिस्सा लिया। एग्जिट पोल के मुताबिक इसमें करीब 43% मतदाताओं ने ही हिस्सा लिया और अब नतीजों को लागू कराने के लिए संसद से अनुमोदन जरूरी है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री हाला मरियम डेसालन ने ओरोमियो क्षेत्र में हुई भगदड़ के लिए प्रदर्शनकारियों को दोषी बताया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस भगदड़ में 52 लोग मारे गए हैं। उन्होंने उन रिपोर्टों का भी खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि एक धार्मिक समारोह के दौरान जुटी लाखों लोगों की भीड़ पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल रात चरमपंथियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया। उड़ी से 30 किलोमीटर दूर जानबाजपुरा में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हुए इस हमले में भारतीय सेना के 1 जवान की मौत हो गई है और 2 अन्य जख्मी हो गए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 चरमपंथी भी मारे गए हैं। घटना की पूरी जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जी, सेना का कहना है कि कल रात 10:30 बजे जो है बारामूला, जो उत्तरी कश्मीर में है, बिल्कुल उसी जिले में है जहां पे उड़ी कस्बा है, जहां 12 ब्रिगेड पर 18 सितंबर को हमला हुआ था, उससे 52 किलोमीटर पहले ही बारामूला का टाउन है उड़ी से पहले, जहां पे 46 RR का कैंप है और उसके बिल्कुल बगल में जो है BSF का भी एक कैंप है। तो 10:30 बजे सेना का कहना है कि हमलावरों ने 18 फीट की वो दीवार है और उसके बाद दो बैरिकेड्स और हैं, वहां पर पहुंचकर फायरिंग की और कैंप में अंदर जाने की कोशिश की। और सेना का कहना था कि ये फिदाई हमला था और जिसे रोका गया और उसके बाद उन मिलिटेंट्स को वहां पे एंगेज किया गया। और जो आखिरी सूचना है वो ये है कि दोनों हमलावरों को मार गिराया गया है, लेकिन इस मुठभेड़ में चूंकि बीएसएफ और सेना साझे तौर पे एंगेज किए हुए थे मिलिटेंट्स को, तो उसमें बीएसएफ के दो अधिकारी जो हैं वो घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है। दो सोल्जर्स के भी, इंडियन आर्मी के दो सोल्जर्स के भी घायल होने की सूचना है।
रियाज, जैसा आपने बताया कि सब कुछ नियंत्रण में कर लिया गया है आर्मी के हवाले से, अब इस हमले के बाद क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे?
जी, जाहिर है उड़ी हमला तो बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल अटैक बन गया था। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो तनाव हो गया था, उसके बाद 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हो गई थी और स्ट्राइक्स के सिर्फ 4 दिन बाद ही ये हमला हुआ है और उड़ी हमले के 2 हफ्ते बाद हुआ है। तो कल वाले हमले के बाद अब पूरे बारामूला क्षेत्र को, पहले तो उड़ी क्षेत्र को सील किया गया था, पूरे बारामूला क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक्स में ये बताया गया कि लॉन्च पैड्स को ख़त्म किया गया, अब जो है पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि इन्फिल्ट्रेटर्स की बात नहीं की जा रही है। हो सकता है पुलिस का कहना ये भी हो आज या कल में कि जो स्लीपर सेल्स होती हैं दो दो तीन तीन मिलिटेंट्स की मुख्तलिफ क्षेत्रों में, तो उनमें से किसी ने ये अटैक जो है वो प्लान किया हो। और उसमें देखने वाली बात ये भी है कि उड़ी हमले के बाद ही पुलिस और आर्मी की खुफिया एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया था कि इसकी आशंका है कि अब इस हमले के बाद एक और ऐसा ही हमला जो है उसकी आशंका बताई जाती थी और उस उन इंटेलिजेंस इनपुट्स को पब्लिसाइज भी किया गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही थी। अब सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा गैरिजंड टाउन है बारामूला और उड़ी का कस्बा भी, खासतौर से जानबाज पोरा भी, तो इतने ज़्यादा गैरिजंड इलाके में किस तरह से मिलिटेंट्स इतना ज़्यादा सफ़र तय करके फिर इस तरह से फोर्टिफाइड आर्मी कैंप्स के नज़दीक पहुँचते हैं और दरवाजे पर ये मुठभेड़ होती है।
बारामूला में चरमपंथी हमले की जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। इस हमले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नियंत्रण रेखा और कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैंने इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता शुजा मलिक से बात की और पूछा कि बैठक के एजेंडे में क्या है।
इस मीटिंग में एजेंडे पे सबसे पहले तो नेशनल एक्शन प्लान डिस्कस किया जाएगा और इसके अलावा कश्मीर में एलओसी के आसपास जो सूरत हाल बनी हुई है उससे वजीर आजम अपनी दूसरी जमातों को आगाह भी करेंगे और उनसे मशावरत भी करेंगे इस हवाले से। इस इजलास में तमाम बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं को दावत दी गई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी खुद शिरकत करेंगे, वफ्द की सदारत करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी इस इजलास में शिरकत करेंगे। तो इस इजलास का मेन या मरकजी मौजू जो है वो कश्मीर में सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान ही रहेंगे।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी उर्दू संवाददाता शुजा मलिक। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में हुआ चरमपंथी हमला और फिर भारत की ओर से कथित सर्जिकल स्ट्राइक और अब बारामूला में कल रात हुआ चरमपंथी हमला। इन हमलों और भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के माहौल ने कराची में हमारे सहयोगी वसतुल्लाह खान को भी परेशान कर रखा है। क्या है उनकी चिंताएं, उन्हीं से सुनते हैं।
तो क्या बंटवारे से पहले विश्व समुदाय से पूछा था कि दोस्तों हम विभाजन करने जा रहे हैं, आपकी इस संदर्भ में क्या सलाह है? दोस्तों हम कश्मीर के भीड़ छत्ते में हाथ डालने जा रहे हैं। दोस्तों हम 65 का युद्ध कर लें कि ना करें, 71 में एक दूसरे पे चढ़ दौड़ें कि खुद को रोक लें, परमाणु बम फोड़ लें कि ना फोड़ें, करगिल खेल लें कि मुंह दूसरी तरफ फेरा लें, तो अब क्यों अपना पिटारा लेके कभी संयुक्त राष्ट्र तो कभी भांत भांत की राजधानियों की तरफ दौड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान को बदमाशी से रोकिए, भारत को दक्षिण एशिया में दादागिरी से मना कीजिए। देखिए बर्दाश्त की भी एक हद होती है, अगर आपने कुछ ना किया तो फिर हमें एक दूसरे का सर फोड़ना पड़ेगा। अभी तो टीवी स्क्रीनों पर ही एक दूसरे को सती करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर ये आग सिर्फ टीवी स्टूडियोज तक थोड़ी रहेगी, इत्यादि इत्यादि। भैया लड़ना है तो लड़ लो, दुनिया को चीख चीख के क्या बताना चाह रहे हो? दुनिया के पास इतनी फुर्सत कहाँ कि हर थोड़े थोड़े समय बाद आपकी चिल्ली पुकार पे ध्यान दे। अब तो दुनिया को भी पता चल चुका है कि आप दोनों प्रोफेशनल रदालियों की तरह हो। शेर आया की कहानी किसी और देश की थोड़ी है, हमारी और आपकी ही तो है, पीढ़ी दर पीढ़ी। बचपन में जब हमें किसी को डराना धमकाना होता मगर हाथापाई से भी बचना चाहते तो अपने एक दोस्त को कहते, देख बे मैं जब इमरान को गालियां देनी शुरू करूं तो देने देना, जब मैं घड़ी उतार के तुझे पकड़ाऊं तो पकड़ लीजो, जब मैं आस्तीने चढ़ाना शुरू करूं तो तू भी मुंह से झाग निकालना, लेकिन जब मैं इमरान की तरफ घूंसा तानते हुए लपकूं तो फिर पीछे से जफ्फा डाल लेना, ताकि बाद में पूरे मोहल्ले को सीना फुला फुला के बता सकूं कि वो तो मुझे अख्तर ने जफ्फा डाल लिया, वरना तो मैं इस हराम खोर इमरान की बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला देता। ज़रा गौर से देखिए, कहीं अमेरिका ने इस समय भारत को तो पीछे से जफ्फा नहीं डाला हुआ, कहीं पाकिस्तान ने तो आस्तीने चढ़ा के चीन को घड़ी नहीं पकड़ा रखी, और हम मीडियाई मामू बने अक्षरों और भाषणों के पत्थरों से एक दूसरे का सर फाड़ने में जुटे पड़े हैं। भैया लड़ना है तो लड़ लो, दुनिया के आगे तमाशा क्यों बने हुए हो। पाकिस्तान में हर दूसरे ट्रक के पीछे लिखा होता है, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। क्या भारत में भी ट्रकों के पीछे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होता है?
वसतुल्लाह खान अपने ही अंदाज में भारत और पाकिस्तान के जो के बीच जो मौजूदा तनाव का माहौल है उसके बारे में बता रहे थे। और अब आगे बढ़ने से पहले अखबारों की सुर्खियों पर नज़र डाल लेते हैं। दिलनवाज़ क्या कहते हैं आज दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबार?
जी, आज के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर बारामूला में भारतीय सेना के कैंप के पास जो चरमपंथी हमला हुआ है उससे जुड़ी खबरें हैं। इसके अलावा जो स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा भारत ने किया था उससे जुड़ी खबर हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर, ग्राफिक्स के जरिए बताया गया है कि किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने इस हमले को अंजाम दिया था। वहीं हिंदुस्तान की एक खबर बता रही है कि पाकिस्तान पर सैटेलाइट से नज़र रखी जा रही है और हर दो घंटे के भीतर डेटा जो है भारत को मिल रहा है। आज की नई दुनिया में एक रंगीन तस्वीर प्रकाशित है, 2 किलोमीटर लंबी चुनरी जिस पर 5 लाख सितारे सजे हैं, इसे मंदिर में ले जाया जा रहा है इंदौर में, और इस चुनरी को दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ ने पकड़ रखा है। इसके अलावा बिहार में जो शराबबंदी कानून फिर से लागू हुआ है उससे जुड़ी खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर लिखता है, शराब पीना और बेचना गैर जमानती, 7 साल की कैद। दिल्ली में कल पुलिस ने फर्जी सिक्के बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, इससे जुड़ी तस्वीर और खबर आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक जो शख्स पकड़ा गया है वो बड़ी तादाद में 10 रुपए के सिक्के बना रहा था, और हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कुछ दिन पहले ये अफवाह चली थी कि 10 रुपए के सिक्के बंद हो गए हैं, तो उसी से इस जुड़ी खबर को देखा जा सकता है। एक खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है जिसमें हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महाश्वेता देवी की जो कहानी थी द्रौपदी, उसके ऊपर बने एक नाटक को लेकर विवाद हो गया है। इसमें एक नाटक में एक महिला के साथ सैनिकों ने रेप किया था और इसके विरोध में वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि सेना को गलत तरीके से इस नाटक में दिखाया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों आयोजित किया गया यूनिवर्सिटी में।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की समीक्षा के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें सिद्धरमैया सरकार कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन का मुद्दा भी उठाएगी। कर्नाटक विधानसभा में भी आज इस बात पर चर्चा होने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु के लिए 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है या नहीं। इससे पहले राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर तमिलनाडु के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पानी छोड़ने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। सुनिए बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कावेरी पानी का विवाद आज एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। आज कर्नाटका की पूर्ण विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में आने वाली है। इस याचिका में कर्नाटका एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहा है। विषय यह है कि कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को केंद्र सरकार को कहा था कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाया जाए और केंद्र सरकार ने फौरन कोर्ट के आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया था। इस विषय को कर्नाटक के पूर्व एडवोकेट जनरल अशोक हरनहली समझाते हैं।
वन ऑप्शन अवेलेबल इज according to section 6A sub clause 7 that any regulation that is to be framed with regard to constitution of the board will have to be placed before the parliament.
इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट में कर्नाटका को एक विकल्प उपलब्ध है। जब कभी पानी प्रबंधन बोर्ड का स्थापित करना हो तो नियम यह कहता है कि इस मामले को संसद के सामने पेश करें। इसका उद्देश्य इतना ही है कि संसद को भी पता चले कि यह प्रबंधन बोर्ड स्थापित हो रहा है। संसद को बताए बिना केंद्र सरकार इस तरह के बोर्ड का गठन नहीं कर सकती है। ये थे अशोक हारनली के शब्द। जब देश के अटॉर्नी जनरल ने शुक्रवार को बोर्ड के स्थापित करने के लिए कोर्ट के आदेश को मान लिया तो कर्नाटका सरकार को आश्चर्य हुआ। कर्नाटका का मानना है कि राज्य के भंडारों का सारा नियंत्रण उसके हाथ में नहीं रहेगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ही 3 जजों के बेंच के सामने 18 अक्टूबर को आने वाला है। तो सवाल ये भी है कि ये 2 जजों के बेंच ने कैसे आदेश दे दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हमारे सारे भंडारों को मैसूर के महाराजा ने अपने जेवरात बेचकर बनाया था और आज हमारी परिस्थिति यह है कि उन भंडारों पर हमारा कोई हक नहीं होगा। आज हमारे किसानों को पानी देने के लिए पानी नहीं है और शहरों के लोगों को भी पानी नहीं मिलेगा। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। सिद्धरामैया लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जब कभी दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छा होता है तो कर्नाटका ने हर आदेश का पालन किया है। दरअसल परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कर्नाटका केंद्र सरकार और बीजेपी के मंत्रियों की मदद मांग रही है। कर्नाटक के कानून मंत्री टीबी जयचंद्रा ने कहा, प्रबंधन बोर्ड के मामले में कानून स्पष्ट है, इसके बावजूद हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कैसे केंद्र सरकार ने यह गलती कर दी कि वो बोर्ड स्थापित करने के लिए सूचित करेगी। हम हमारे राज्य के केंद्रीय मंत्रियों से निवेदन कर रहे हैं कि वो उनकी सरकार पर दबाव डालें। ये थे टीबी जयचंद्रा के शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि कर्नाटका 6000 क्यूजेक पानी तमिलनाडु को छोड़े। कर्नाटका ने सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया कि विधानमंडल के बैठक में पानी छोड़ने का निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल आज कर्नाटका और उसकी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसके आदेश को ठुकराने के लिए कर्नाटका सरकार पर क्या कार्रवाई करेगी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में भारत भी शामिल हो गया है। इस सिलसिले में भारत के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में औपचारिक रूप से दस्तावेज सौंपे। इस समझौते के तहत भारत 2030 तक 40% बिजली गैर इस जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। भारत 62वां देश है जिसने पेरिस जलवायु समझौते को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को बधाई दी है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी जयंती के मौके पर भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधित पेरिस समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए दस्तावेज सौंप दिए। भारत के समझौते में शामिल होने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने वीडियो के जरिए संदेश में इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया।
This historic step will further India's sustainable path to growth and development. सभी भारतीयों को धन्यवाद।
दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में चीन, अमेरिका और भारत शामिल हैं। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की भागीदारी 4.5% है। जलवायु परिवर्तन के पीछे कार्बन उत्सर्जन को बड़ी वजह माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने गांधी जयंती के दिन को भारत द्वारा पेरिस समझौते में शामिल होने के लिए चुने जाने के बारे में कहा,
द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी वाज पर्टिकुलरली चोजन फॉर द डिपोजिशन बाय इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर।
भारतीय राजदूत कह रहे थे, भारत द्वारा पेरिस समझौते को औपचारिक रूप से ग्रहण करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती का दिन चुना जिससे गांधी जी की पर्यावरण से संबंधित विरासत को भी उजागर किया जा सके। 7 दशक पहले भी गांधी जी पर्यावरण को संभाल कर रखने की बात करते थे और उसे आने वाली नस्लों की अमानत के तौर पर देखते थे। पिछले साल पेरिस में होने वाले इस जलवायु समझौते के तहत ये कोशिश की जा रही है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए। इस समझौते के तहत भारत 2030 तक 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। इस समझौते के तहत सन 2020 तक विकासशील देशों को पर्यावरण के लिए $100 अरब की मदद देने का वादा भी किया गया है। भारत इस समझौते में शामिल होने वाला 62वां देश बन गया है। यूरोपीय संघ भी इस समझौते में शामिल हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद 55% उत्सर्जन की जरूरी सीमा भी पार हो जाएगी। हर 5 सालों में इस समझौते की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कल जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से 3 और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही मलकानगिरी में जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण दम तोड़ने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जिनमें ज्यादातर छोटे बच्चे हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारी आज मलकानगिरी के दौरे पर जा रहे हैं। भुवनेश्वर से संदीप साहू की रिपोर्ट।
मलकानगिरी जिले में जापानीज इंसेफेलाइटिस के कारण पहली मौत पिछले महीने की 9 तारीख को हुई। इसके बाद से जिले में मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 दिनों में जिले में कुल 24 मौतें हुई, जिनमें से ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। मलकानगिरी के जिला सदर अस्पताल में इस समय भी लगभग 30 बच्चों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल भेजा गया है और फॉगिंग का काम भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीमारी पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि जापानीज एंसेफेलाइटिस आमतौर से सुअरों के जरिए मनुष्य तक पहुंचता है, इसलिए सरकार इस समय संक्रमित सुअरों की पहचान पर विशेष ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री अतनु सब्यसाची नायक का कहना है,
अन्य प्रिवेंटिव मेजर्स कौन नहीं हम तक देखिए और सबसे गुरुत्वपूर्ण कथा क्यों घुसरी मैंने इन्फेक्टेड
हमने डॉक्टरी टीम भेजी है जो ये देख रही है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है उन सुअरों की पहचान करना जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसके लिए पशुपालन विभाग एक विशेषज्ञों का दल मलकानगिरी भेज रहा है। विभाग की ओर से खून के नमूनों की जांच के लिए कोलकाता से भी एक टीम प्रभावित इलाके में भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अतनु सब्यसाची के शब्द। मलकानगिरी जिले में जापानीज इंसेफेलाइटिस पर काबू न पाए जाने का एक प्रमुख कारण ये है कि आदिवासी बहुल इस जिले के 35% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार जिले में 30% से भी कम बच्चों को सभी टीके लगवाए गए हैं। संदीप साहू, BBC, भुवनेश्वर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
खेल की दुनिया में हफ्ते भर क्या हलचल रही, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत ने कोलकाता में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को दबाव में ला दिया है। हालांकि कल जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब इसका स्कोर दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 227 रन था, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 204 रनों पर समाप्त हुई और भारत को पहली पारी के आधार पर 112 रनों की बढ़त हासिल हुई। अब भारत के पास 339 रनों की बढ़त है और उसके 2 विकेट बाकी हैं। कल स्टंप के समय भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान 39 और भुवनेश्वर कुमार 8 रन बनाकर खेल रहे थे। वैसे कल भारत ने अपनी दूसरी पारी में एक समय अपने 6 विकेट केवल 106 रनों पर खो दिए थे। तब रोहित शर्मा और रिद्धिमान साहा के बीच 7वें विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी हुई और भारत की स्थिति संभल गई। रोहित शर्मा ने 132 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 82 रन बनाए। वे सेंटनर की गेंद पर ल्यूक रोंकी के हाथों लपके गए। रोहित शर्मा ने माना कि साहा और उनके बीच हुई साझेदारी से भारत खतरे से बाहर है।
We've seen over the years in test match cricket where
There have been quick wickets and you know it needs.
हमने पिछले कई सालों में टेस्ट क्रिकेट में देखा है वहाँ कुछ विकेट जल्दी गिर जाते हैं, उसके बाद जरूरत होती है एक या दो बल्लेबाजों की जो टीम को मुश्किल से बाहर निकाल सके। साहा और मेरे बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी महत्वपूर्ण साबित हुई। जब हमने एक बार शॉट्स खेलने शुरू किए तो दबाव एक बार फिर न्यूजीलैंड पर बन गया, क्योंकि यहां का आउटफील्ड तेज है। अगर एक बार गेंद पर आंख जम जाए तो रनों की रफ्तार तेज की जा सकती है, और यही हमने किया।
रोहित शर्मा के अलावा कप्तान विराट कोहली ने भी 45 रनों की उपयोगी पारी खेली। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने जैसे तैसे 17 रन जरूर बनाए, लेकिन वो लगातार संघर्ष करते दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की गेंद दो बार उनके बाएं अंगूठे पर लगी। आज उनके अंगूठे का एक्सरे भी होगा। मुरली विजय के बल्ले से भी केवल 7 रन निकले तो चेतेश्वर पुजारा 4 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर LBW हुए। इससे पहले कल न्यूजीलैंड की पहली पारी 204 रनों पर समाप्त हुई। जीतन पटेल ने 47 रन बनाकर न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने 48 रन देकर 5 और मोहम्मद शमी ने 70 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। अब देखना है कि 339 रनों से आगे भारतीय टीम जीत के लिए कितने रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखती है। और अब बात BCCI और लोढ़ा समिति की। पिछले दिनों लोढ़ा समिति इस बात को लेकर नाराज थी कि BCCI अभी भी उनकी सारी सिफारिशें मानने में आनाकानी कर रहा है, जबकि उन्हें पूरी तरह से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। अब कुछ मुद्दों को लेकर कल BCCI के पदाधिकारियों की बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का वही जाना पहचाना बयान सामने आया कि कुछ बातों को लेकर BCCI के सदस्य सहमत नहीं है।
स्पेशल जनरल मीटिंग में सभी राज्यों के मेंबर्स ने पार्टिसिपेशन की। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने लीव ऑफ एब्सेंस मांगा जो उनको दिया गया, और जो लोधा कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उनको मेंबर्स ने गहन चर्चा के बाद बहुत सारी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस माना है, और जिन रिकमेंडेशंस पर मेंबर को लगता था कि उनको वो लागू नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर अपने सुझाव देकर उनको एक्सेप्ट नहीं किया है।
दरअसल कुछ आसान सिफारिशों को मानकर BCCI लोढ़ा समिति की निगाह में साफ सुथरा दिखना चाह रही है, जबकि लोढ़ा समिति की निगाह सीधे सीधे उनके कार्यकाल, एक पद एक अधिकार, एक राज्य एक वोट और राजनीति से परे अधिकारियों द्वारा BCCI के संचालन पर है। उधर बैडमिंटन की ताजा रैंकिंग में भारत की साइना नेहवाल 5वें पायदान पर हैं, जबकि रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली PV सिंधु 10वें से 8वें पायदान पर पहुंच गई हैं। लेकिन सबसे अधिक फायदा के श्रीकांत को हुआ है, जो 5 स्थानों के फायदे के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका ने कल जोहानिसबर्ग में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 142 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस हारकर कप्तान फेफ डु प्लेसी के 111 रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 361 रन बनाए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 37.4 ओवर में ही 219 रनों पर ढेर हो गई। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम पेश कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत प्रशासित कश्मीर के बारामूला में सैन्य कैंप पर हुए चरमपंथी हमले में एक सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 2 हमलावर मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक चरमपंथियों ने ग्रेनेड से हमला किया और गोलीबारी की। इलाके में खोजबीन अभियान चल रहा है। कोलंबिया में हुए जनमत संग्रह में लोगों ने बेहद कम अंतर से फार्क विद्रोहियों के साथ हुए सरकार के शांति समझौते को नकार दिया है। जनमत संग्रह में 40% से भी कम लोगों ने हिस्सा लिया। कोलंबिया में पिछले 52 सालों से गृह युद्ध चल रहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने जनमत संग्रह में लोगों के भारी बहुमत से यूरोपीय संघ के प्रवासी कोटे को नकारने के बाद जीत का दावा किया है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री हाला मरियम डेसालन ने ओरोमियो क्षेत्र में हुई भगदड़ के लिए प्रदर्शनकारियों को दोषी बताया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस भगदड़ में 52 लोग मारे गए हैं। उन्होंने उन रिपोर्टों का भी खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि एक धार्मिक समारोह के दौरान जुटी लाखों लोगों की भीड़ पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की थी। चश्मदीदों के मुताबिक बिशोफ्तू शहर में प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के भाषण में व्यवधान डाला, जिसके बाद हालात खराब हुए। वहीं विपक्ष का कहना है कि कम से कम 150 लोग मारे गए हैं। ब्राजील में अमीर व्यापारी जुआंग डोरिया ने देश के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो के मेयर का चुनाव जीत लिया है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया हेमंत कुशवाहा ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।